ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। पिछले कुछ रविवारों से भक्ति की नवदा विधियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तक चर्चा हो चुकी है प्रार्थनाओं पर, वंदन अर्चना पर, अर्थात भगवान की कैसे अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा या उनका आश्रय कैसे लेना चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने थोड़ी बहुत इस पर चर्चा की थी, आचार्यों ने क्या समझाया है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं भगवान के चरण कमलों के विषय में, समाश्रिता ये पाद पल्लवम प्लवम। तो इस तरह से भगवान के चरण कमल जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए, क्योंकि भक्ति का ये साध्य है। हम लोग साधना करते हैं एक साध्य की प्राप्ति के लिए, और वो साध्य हैं भगवान के चरण कमल। आप सबको दिखाई दे रहे हैं ये पीछे सबको। जब हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल इस जगत में रहते हुए, इस भौतिक बंधन में रहते हुए भगवान के नाम का जप करना है और जब मुक्त हो जाएंगे तब नहीं करना। इस जगत में साधक के रूप में हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, और भगवान के धाम में एक सिद्ध के रूप में हम भगवान के नाम का जप करते हैं। नाम वही है, जप वही है, केवल हमारी स्थिति में अंतर आता है, भगवान के नाम का आस्वादन करने में अंतर आता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं पेड़ पे लगे हुए एक आम का। जब वो कच्चा होता है तो भी आम ही कहलाता है, लेकिन वो रस नहीं देता, स्वाद नहीं देता, बड़ा खट्टा होता है। लेकिन जब वही आम पक जाता है तो फिर वो बड़ा स्वाद देता है, रस देता है। इसी तरह भक्ति है, एक साधक ये कच्चे आम की तरह है, वो भी शुद्ध भक्त है लेकिन अभी उसने हरि नाम का रस नहीं लिया है, कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय नहीं लिया है। इसीलिए इस भौतिक जगत के रस में अभी भी बहुत रुचि है, लेकिन धीरे धीरे जब वो भक्ति के मार्ग का पालन करता है, इन विधियों को बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तब फिर वही कच्चा आम वो पक जाता है, उसमें रस, उसमें स्वाद आ जाता है। अर्थात एक साधक के रूप में जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमें इतनी रुचि नहीं होती है, हमें केवल आनंद कंद दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब एक सिद्ध के रूप में हम इस हरि नाम को लेते हैं तो वही हरि नाम हमारी आंखों में अश्रु लेकर आता है, प्रेम लेकर आता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो हरि नाम है, जो हमारे लिए एक साधन है साध्य तक पहुंचने का, उसमें भगवान के चरण कमल कैसे सहायता करते हैं, भगवान के चरण क्या हैं, और भगवान के चरण के ये जो अलग अलग चिन्ह हैं ये क्या हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में भगवान कपिल माता देवहूति को ये निर्देश देते हैं कि भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि इस भक्ति की, इस स्मरण का प्रारंभ होता है भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से। ये पहली अवस्था है भक्ति में। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए, और उसके द्वारा फिर आगे हम धीरे धीरे भगवान के पूर्ण विग्रह को देख सकते हैं। आचार्य समझाते हैं कि हम भगवान से साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान प्राप्त नहीं होंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इतना कष्टमय जीवन है और ऐसे कष्टमय जीवन में भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ बात है, हो नहीं सकता। और कष्टों में हम भगवान की भक्ति को कभी कभी छोड़ भी देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं और हमें लगता है कि अब भगवान भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। एक कहानी है, एक कथा है कि एक बार एक छोटा सा लड़का वो अपने माँ के पास गया और उसने अपनी माँ से कहा कि मैं बहुत तंग हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता, इस जगत में बहुत कष्ट है। तो उसकी माँ ने उसको एक बहुत सुंदर उदाहरण दिखलाया। उसने तीन पतीले, तीन पात्र में पानी भरा और तीनों को अग्नि पर रख दिया अलग अलग, और फिर एक में उन्होंने गाजर डाली, एक में अंडा डाला, वो भक्त नहीं थे, और एक में उन्होंने कॉफ़ी, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उसको डाला, और तीनों पात्रों को 20 मिनट तक उन्होंने गैस पर गर्म होने दिया। फिर जब पानी बहुत उबल गया तो फिर उन्होंने उसको उतारा और उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि अब इन तीनों को छुओ। तो उसने पहले गाजर को छुआ, तो गाजर आप सब जानते हैं कि जब उबाली नहीं जाती है तो उसके पहले बहुत कड़क होती है, कठोर होती है, लेकिन जब उसने फिर स्पर्श किया तो बहुत कोमल हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। फिर उसने अंडे का स्पर्श किया, उसकी माँ ने कहा कि उसका जो बाहर का छिलका है उसको निकाल दो, निकाला और देखा अंदर जो द्रव होता है वो कठोर हो गया था। और फिर उन्होंने कहा कि जो कॉफ़ी है इसको पियो, तो उन्होंने उसका आस्वादन लिया, उनको बड़ा आनंद आया। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा कि इससे तुम्हें क्या पता चला। लड़के को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या है, गाजर अंडा कॉफ़ी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा नहीं समझ में आया। तो फिर उस समय उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि देखो ये तीनों चीज़ें एक ही अवस्था में थी, तीनों पानी में थे, पानी गर्म हो रहा था, तीनों एक ही समय तक अग्नि में थे, लेकिन एक ही स्थिति में होते हुए भी तीनों का जो फल था उस स्थिति के बाद जो उनका रूप हुआ वो अलग अलग था। पहला वो कोमल हो गई, दूसरा वो कठोर हो गए, और तीसरा कॉफ़ी के जो दाने थे उन्होंने पानी को बदल दिया, पानी फिर पानी नहीं रहा, कॉफ़ी हो गया। तो फिर उस समय उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा मार्ग चुनना चाहते हो। और बेटे को बात समझ में आ गई, आशा करते हैं आप सबको भी समझ में आ गई होगी। समझ में आई किसी को? नहीं। तीन अवस्थाओं का वर्णन हुआ, जब जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। एक, व्यक्ति टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, जैसे गाजर कठोर था लेकिन जब कष्ट आए, पानी, गर्म पानी एक कष्ट के समान, तो फिर वो कमजोर हो गया। तो एक अवस्था ऐसी होती है हम सब के लिए कि जब कष्ट आते हैं तो हम लोग कमजोर हो जाते हैं। भक्ति में रहते हुए हम लोग उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, कर नहीं पाते, बहुत सारे कष्ट हैं जीवन में, अब मंदिर नहीं जाएंगे, फिर जब अच्छा हो जाएगा, जब सब कुछ ठीक होगा तब जाएंगे, हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं भक्ति में। दूसरी ओर अंडे के उदाहरण से देखते हैं कि अंडे में पहले जो अंदर द्रव्य था वो तरल स्थिति में था, लेकिन उस अवस्था के बाद वो कठोर हो गया। तो दूसरी अवस्था ये होती है कि जब कष्ट होते हैं तो हम लोग बहुत कठोर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए मैं हिलने वाला नहीं हूँ, कठोर हो जाते हैं एकदम, कोई मुझे कितना ही क्यों ना कहे, मैं सब कुछ सबको देख लूँगा, कठोर। और तीसरी अवस्था जहाँ हम देखते हैं कि कॉफ़ी के दानों ने पानी को बदल दिया, ये भक्त के लक्षण हैं। भक्त को अपनी परिस्थिति को बदलना चाहिए, कृष्णमय करना चाहिए, ना उसे कमज़ोर होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कठोर। कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता, इसीलिए उसे अपनी अवस्था को बदलना चाहिए, अपनी स्थिति को बदलना चाहिए। कष्ट आएंगे जीवन में, लेकिन उन कष्टों में अगर हम जीवन को कृष्ण भावनामय बनाकर चलें, स्थितियों को, स्थितियां हो सकती हैं भक्ति के विरुद्ध हैं, जैसे पानी, गर्म पानी वो कॉफ़ी नहीं था, लेकिन उन दानों ने, और दाने क्या थे, छोटे से दाने थे, बॉईल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के वातावरण को बदल दिया। ऐसे हम लोग भी बहुत तुच्छ हैं माया के परिस्थितियों के सामने, लेकिन अगर कृष्ण के चरण कमलों पर श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, तो फिर हम अपने आसपास के वातावरण को बदलेंगे। जो स्थितियां कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हैं उनको अनुकूल करेंगे, और ये भक्त के लक्षण हैं, ये गुण हैं। हमें कमज़ोर नहीं हो जाना है, हमें भक्ति नहीं छोड़ देनी है, हमें जप नहीं छोड़ देना है, लेकिन अपनी स्थितियों को कृष्ण भावनामृत के माध्यम से उनको अनुकूल बनाना है कृष्ण भक्ति के लिए। तो इसीलिए भगवान कपिल ये बताते हैं कि हमें भक्ति करनी चाहिए कृष्ण के चरण कमलों से प्रारंभ करके, और इसके द्वारा वो बताते हैं कि भगवान के चरण कमल और जो उनके नख हैं, केवल, वो बोलते हैं चरण तो बहुत दूर की बात है, केवल जो उनके नख हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रकाशमान हैं कि हमारे हृदय के करोड़ों करोड़ों जन्मों के अंधकार को नाश कर सकते हैं। इसलिए जब हम भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हैं, और न केवल चरण कमल, भगवान के केवल नख, क्योंकि भगवान के नख भी बड़े शक्तिशाली हैं, नख ऊपर गोवर्धन धारो, भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन नहीं उठाया था, छोटी उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नाखूनों पर गोवर्धन उठा लिया था, नख ऊपर गोवर्धन धारो, तो बड़े शक्तिशाली हैं और साथ ही साथ बड़े प्रकाशमान हैं, हमारे हृदय के सारे अंधकार को दूर कर सकते हैं। इसलिए भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ये बताते हैं कि हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। आचार्य समझाते हैं कि जब हमारा स्मरण, भक्ति की विधि क्या है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जब हमारा स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है तो वो पाद सेवन कहलाता है। भगवान के चरण कमलों का सतत चिंतन, ये पाद सेवन है। शुरुआत की अवस्था में हमारा सतत चिंतन नहीं होता, क्यों नहीं होता चिंतन, क्योंकि आसक्ति नहीं है, हमें जिससे आसक्ति होती है उसका चिंतन बिना कहे हो जाता है, किसी को आकर कहना नहीं पड़ता, किसी माता को कि आप अपने पुत्र का चिंतन कीजिए, किसी प्रेमी को कि आप अपनी प्रेमिका का चिंतन कीजिए, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रेम है, आकर्षण है। लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं है, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति आकर्षण नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारा स्मरण कृष्ण के चरण कमलों का जब प्रारंभ होता है और जब धीरे धीरे बहुत तीव्र हो जाता है तो वो पाद सेवन कहलाता है। तो भगवान के चरण कमल इतने शक्तिशाली हैं कि हर रोज अपनी भक्ति की अलग अलग क्रियाओं में, जैसे जप में विशेष करके, अगर हम इन चिन्हों का स्मरण करें केवल, ये जानते हुए कि ये चिन्ह क्या हैं, ये किसके सूचक हैं, तो हम बड़ी आसानी से कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। रामायण की वो कथा हमने श्रवण की है कि जब हनुमान जी सीता देवी के पास श्री राम की अंगूठी लेकर पहुंचे, पहले तो सीता देवी ने स्वीकार नहीं किया कि ये राम के दूत हैं, लेकिन जब अंगूठी को देखा तो अंगूठी से उन्हें वो उंगली स्मरण आई श्री राम की, जिसमें वो इस मुद्रिका को पहना करते थे। फिर उस हाथ का स्मरण किया, फिर उनके शरीर का स्मरण किया, पूरे रूप का स्मरण किया और बड़े आनंद में हो गई। ऐसी अवस्था में जहां वो रावण की लंका में थी, असुरों से घिरी हुई थी, चारों ओर केवल कष्ट ही कष्ट थे, काफी समय बीत गया था, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न हो गई। यही अवस्था जीव की है। हम भी इस भौतिक जगत में हैं जो लंका के समान है, चारों ओर असुर हैं, अभक्त हैं, माया है, और काफी समय बीत गया है हमें यहां पर कष्ट लेते हुए। लेकिन जैसे ही इन चिन्हों का स्मरण हम करते हैं, फिर इन चिन्हों से वो चरण कमल स्मरण आते हैं, फिर उन चरण कमलों से भगवान का श्री विग्रह स्मरण आता है, और फिर व्यक्ति परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो इसीलिए आज हम लोग इन 19 चिन्हों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, जितने चिन्ह आज हम लोग चर्चा कर सकें, फिर अगले रविवार को और इस पर चर्चा करेंगे। तो भगवान के दोनों चरणों में 19 चिन्ह होते हैं, ये आप लोग चित्र यहां पर देख रहे हैं, 19 चिन्ह हैं भगवान के चरण कमलों में। जो भगवान का बायां चरण है उसमें 8 चिन्ह हैं और दाहिने में 11 चिन्ह हैं। ये श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। श्रीमती राधा रानी के चरण चिन्ह भी ऐसे ही हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़े बहुत चिन्ह ज्यादा हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के भी चरण चिन्ह में थोड़े से चिन्ह ज्यादा हैं चरण कमल में, और नित्यानंद प्रभु। तो आज हम लोग केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये चरण कमल हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग भगवान का जो बायां बाहिनी और उनका चरण बायां चरण है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें 8 चिन्ह हैं। और इन चिन्हों में हम लोग देखते हैं, सबसे ऊपर अगर आप देखें तो शंख बना हुआ है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे? पीछे अगर दिख रहा है तो हाथ ऊपर कीजिए। दिखाई दे रहा है? ठीक, शंख दिख रहा है ना। तो सबसे पहला शंख है, फिर उसके पास में हम लोग देखते हैं ऐसे दो गोले बने हुए हैं, ये अंबर है, आकाश वृत्त। फिर उसके नीचे धनुष है, धनु, जिसमें प्रत्यंचा नहीं है, इसका भी महत्व है, जब इस पर चर्चा करेंगे तो समझाएंगे। फिर उसके नीचे आप देखते हैं गोष्ठपद है, गाय के खुर के निशान, गाय का जो खुर होता है, गाय का पांव, जब वो रखते हैं तो जो निशान बन जाता है उसको गोष्ठपद कहते हैं। तो कितने हो गए? 4 चिन्ह। फिर इसके नीचे हम लोग देखते हैं 4 कलश बने हुए हैं, कुंभ। तो एक कुंभ का चिन्ह है, ये 5वां चिन्ह है। छठा चिन्ह हम देखते हैं एक त्रिकोण बना हुआ है और सातवां अर्धचंद्र और आठवां मीन या मछली मत्स्य। तो ये आठ चिन्ह भगवान के चरण कमलों में हैं और दाहिनी ओर 11 चिन्ह हैं। वो 11 चिन्हों पर जब चर्चा करेंगे तब फिर उसका भी वर्णन करेंगे। आज प्रयास करेंगे इन आठ चिन्हों पर चर्चा करने का, जो संभव नहीं है समय के कारण। तो सबसे पहला चिन्ह शंख का है, वहां पर आप देखिए ऊपर शंख बना हुआ है। तो शंख ये क्या सूचक है, क्यों भगवान के चरणों में शंख बना हुआ है? शंख दो प्रकार से कार्य करता है, एक वो बजता है शंखनाद, और दूसरा वो अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जल भरकर राधा कृष्ण का गौर निताई का अभिषेक किया जाता है, भगवान का अभिषेक होता है। तो शंख ये दो प्रकार से कार्य करता है और ये दोनों प्रकार से कार्य करते हुए भक्ति के मार्ग में हम सबको मदद करता है। क्योंकि जब शंख नाद होता है, जब शंख बजता है, तो ये सूचक हो सकता है विजय का या फिर ये सूचक हो सकता है पराजय का। जैसे हम लोग भगवद गीता में देखते हैं प्रथम अध्याय में वर्णन किया गया है, भीष्म देव ने शंख बजाए कौरवों की तरफ से, अन्य लोगों ने शंख बजाए, लेकिन जब भगवान ने शंख बजाया, जब अर्जुन ने शंख बजाया, पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, तो क्या हुआ? कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसा वर्णन है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इससे ये पता चलता है, ऐसा वर्णन नहीं है कि जब कौरवों ने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए या पांडवों के हृदय में भय आ गया, लेकिन जब पांडवों ने बजाए तब कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया, और इसीलिए उसको विजय का सूचक माना गया है, निर्भयता का सूचक माना गया है। शंख निर्भयता प्रदान करता है। जब शंख बजे तो पांडव निर्भय हो गए कि हाँ अब हमारी जीत निश्चित है, लेकिन कौरव वो भयभीत हो गए कि अब हमारी पराजय निश्चित है, केवल शंख बजने से, केवल शंख नाद से। और ये पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण का, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने इसको कई और स्थानों पर बजाया और उसका क्या प्रभाव हुआ ये हमें जानना चाहिए। दरअसल भगवान सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए विद्या अर्जन करने के लिए, 64 कलाओं को सीखने के लिए, और उन 64 कलाओं को केवल 64 दिन में सीख लिया। ऐसी ऐसी एक कला सीखी कि हम लोगों को 64 जन्म लग सकते हैं एक एक कला सीखने के लिए, लेकिन भगवान ने केवल 64 दिनों में उसको सीख लिया, विद्या पूरी हो गई। अब उन्हें गुरु दक्षिणा देनी थी। ये नियम है शास्त्रों का, वेदों का, कि जब गुरु से कोई चीज स्वीकार करते हैं, ज्ञान स्वीकार करते हैं, तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। वैसे केवल गुरु के लिए नहीं, नियम ये भी है कि हम लोग जब भी किसी से कोई चीज़, कोई सेवा स्वीकार करें, हमें बदले में कुछ देना चाहिए। और अगर सबसे अच्छी चीज़ देना चाहते हैं तो कृष्ण देना चाहिए, कृष्ण का नाम देना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो। तो इसलिए इस नियम का पालन होना चाहिए। तो फिर दक्षिणा देने का समय आया, सांदीपनी मुनि से पूछा। सांदीपनी मुनि ने कहा, आप भगवान हैं, आप सबको जानते हैं, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं? आप मेरे यहां रहे, आपने मुझसे शिक्षा ग्रहण की, मेरा भाग्य है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मेरा जो पुत्र मर गया है, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसको आप पुनः वापस ले आइए, क्योंकि ये तो केवल आप कर सकते हैं। तो कृष्ण और बलराम गए प्रभास क्षेत्र में समुद्र किनारे, और उन्होंने आदेश दिया समुद्र देवता को कि तुमने जो सांदीपनि मुनि के पुत्र को ले लिया है, क्योंकि सांदीपनि मुनि का पुत्र समुद्र में गिर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी वहां, तो तुमने लिया है उसको वापस करो तुरंत। तो समुद्र देवता बाहर आए, कांपने लगे और उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने आपके गुरु के पुत्र को नहीं लिया है, मेरे अंदर एक पांचजन्य नामक राक्षस, पांचजन वो रहता है और उसने उनका वध किया है। तो कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया समुद्र में और पांचजन्य नामक राक्षस को मार दिया। इस राक्षस ने अपने शरीर के चारों ओर एक शंख बना लिया था और बड़ा शक्तिशाली था ये, समुद्र भी कुछ नहीं कर पा रहा था उसका। तो कृष्ण ने उसका वध किया और उस शंख को प्राप्त किया, इसीलिए उनका शंख कहलाता है पांचजन्य। वैसे ये पांचजन्य शंख उनका शाश्वत शंख है, ऐसा नहीं है कि उन्हें इस लीला में मिला, हाँ इस पृथ्वी पर इस लीला से प्राप्त हुआ। वैसे तो हमने पूर्व में भी देखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कई चीजें बाहर आई, एक धनुष आया हरि धनु और एक शंख आया जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान ने ले लिया। तो ऐसे तो ये शाश्वत पार्षद है भगवान का, लेकिन इस लीला में इस प्रकार से भगवान के साथ में आया। तो भगवान ने उस असुर का वध किया लेकिन वो बच्चा मिला नहीं, और उन्हें पता चला कि बच्चा तो यमलोक पहुंच गया है। तो फिर तुरंत कृष्ण और बलराम पांचजन्य शंख को लेकर यमपुरी चले गए और यमपुरी में उन्होंने यमपुरी के बाहर खड़े होकर शंखनाद किया। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। स्कंद पुराण वर्णन करता है कि भगवान के केवल शंख बजाने का क्या असर हुआ। हम लोग शंख की चर्चा कर रहे हैं इसीलिए इस चर्चा को कर रहे हैं। तो वहां पर नरक लोकों में एक वन है जिसे कहते हैं असिपत्र वन। वहां के जो एक एक पत्ते हैं पेड़ के वो भालों के समान हैं, और जब किसी व्यक्ति को वहां ले जाया जाता है उस वन में, तो केवल वहां चलने मात्र से उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि वो पत्ते नहीं है, वो भाले हैं। लेकिन जब कृष्ण ने शंखनाद किया तो ऐसे बताते हैं कि उस वन के जितने पत्ते थे वो सारे गिर गए। रौरव नाम का एक नरक है जिसमें रुरु नाम के प्राणी हैं जो पापियों के शरीर को नोच डालते हैं। जिस व्यक्ति को रौरव नरक में ले जाया जाता है, कभी और आपके सामने नरकों का वर्णन करेंगे। सुनना चाहते हैं ना आप सब, नरक क्या होते हैं और कितने प्रकार का आनंद वहां, सॉरी कितने प्रकार का कष्ट व्यक्ति वहां ले सकता है या उसको मिलता है। तो रौरव नाम का नरक है जिसमें रुरु नाम के प्राणी हमारे शरीर को नोचते हैं। लेकिन एक बहुत अद्भुत बात है नरक की, हमें एक विशेष प्रकार का शरीर, एक योनि दी जाती है जिसे यातना योनि कहते हैं, यातना शरीर कहते हैं। बहुत यातनाएं सहता है व्यक्ति लेकिन मरता नहीं है। उसकी आंखों को नोच लिया जाता है, उसके शरीर को फाड़ दिया जाता है, उसके शरीर से आंतड़ियों को निकाल दिया जाता है, वो सब देखता है। कष्ट वही होता है जो इस पृथ्वी पर शरीर को कष्ट होता है, लेकिन व्यक्ति मरता नहीं। बड़ी अद्भुत बात है। यहां अगर कोई आपको चाकू मार दे आपको थोड़ा सा दर्द होगा फिर आप मर जाएंगे संतुष्ट, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। सारे शरीर को फाड़ दिया जाता है फिर भी आप मरते नहीं हैं और देखते रहते, अरे अरे वो मेरे हाथ को निकाल कर ले गया, वो मेरी आंतड़ियों को ले गया, वो मेरे हृदय को ले गया। सारी जो आपने, अगर कोई डॉक्टर हो जिसने मेडिकल नॉलेज ली हो, वो सारी वहां काम आती है, क्योंकि अंगों को पहचान सकते हैं ना, नहीं तो अंगों को कैसे पहचानेंगे। अब जिसने मेडिकल नॉलेज नहीं ली है, डॉक्टर नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा उसकी किडनी जा रही है या पेनक्रियस जा रहा है। तो डॉक्टरों के लिए अच्छा है, और वैसे भी सारे डॉक्टर नरक में ही जाने वाले हैं। नहीं, भक्तों को छोड़कर, हमारे अभी कुछ डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे दिखाई देता है। तो जब शंखनाद हुआ तो जो रुरु नाम के प्राणी थे उन्होंने अपने सारे कार्य बंद कर दिए। कुंभीपाक, ये सारा वर्णन हुआ है स्कंद पुराण में, कुंभीपाक नाम का जो नरक है जहां पर पकाया जाता है, कुंभीपाक। आपको बड़े प्रेम से उबलते हुए तेल में डाला जाता है, जैसे आप लोग पूड़ी तलते हैं और आपको बड़ा आनंद आता है बाद में पूड़ी खाने पे, लेकिन उस आटे को क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता है, तो वो पता चलने के लिए कुंभीपाक में ले जाया जाता है। फिर आपको बहुत आराम से ऐसे तला जाता है, वो छलनी होती है उनकी बहुत बड़ी होती है वो, और जिससे ऐसे वो ये करते हैं ना, उठाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छलनी या पालटा कुछ बोलते हैं ना, हाँ झारा, झारा, तो उनका बहुत बड़ा झारा होता है, तो ऐसे घुमाते रहते हैं आपको, पलटते रहते हैं, हाँ चला अभी हाथ रह गया थोड़ा, वो भी फूला कि नहीं फूला। तो शंखनाद से कुंभीपाक का सारी अग्नि बंद हो गई, पकना बंद हो गया। तो और भी कई नरकों का वर्णन है, आज हम लोग कृष्ण के चरण कमल कर रहे हैं इसलिए ज्यादा नरक का वर्णन नहीं करेंगे। तो इस तरह से जितने भी नरक थे, भैरव नाम का भी एक नरक है, आपको मालूम है भैरव में लोगों को बहुत भय लगता है इसीलिए भैरव कहते हैं उसको। तो वहां सारे लोग भयमुक्त हो गए केवल कृष्ण के शंखनाद से। और फिर सारे नरक लोकों में जितने भी लोग थे, जैसे ही उन्होंने शंखनाद को सुना वो मुक्त हो गए। और स्कंद पुराण वर्णन करता है कि उन्होंने आध्यात्मिक धाम को प्राप्त किया केवल शंखनाद सुनकर कृष्ण की। तो देखिए, अब अगर हमारी स्थिति को हम लोग तुलना करें तो हम भी इस कष्ट में हैं, संसार दावा नलली ढलोका, यहाँ पर हैं, कष्ट पा रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण का शंखनाद हमें सुनाई दे तो हमारे हृदय विदीर्ण नहीं होने चाहिए। विदीर्ण किसके होते हैं? असुरों के। भीम ने जब शंख बजाया, जब भगवान ने बजाया और अर्जुन ने बजाया, तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए, वो जान गए हम हारेंगे। लेकिन जब भीम ने बजाया तो आप जानते हैं क्या हुआ? महाभारत में वर्णन है कि भीम ने जब शंख बजाया तो जितने भी उस तरफ के योद्धा थे वो कांपने लगे, जितने हाथी थे उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया, इतना घबरा गए हाथी, जितने वहां के हाथी थे। आप सोचिए हाथी क्या घबराएगा, आप अगर हाथी के सामने जाकर आप में से कोई शंख बजाए, हाथी क्या बोलेगा, अपनी सूंड घुमाएगा और आप शंख के साथ ऊपर। लेकिन वहां युद्ध में, और वो भी युद्ध वाले हाथी, जितने हाथी थे उनका उन्होंने मलमूत्र त्याग दिया, इतना घबरा गए वो, कांपने लगे हाथी भीम के केवल शंखनाद से। तो इसीलिए ऐसे, लेकिन जब भगवान शंखनाद करते हैं तो हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो शंखनाद, इसका स्मरण हमें जप के समय करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमें इस शंख से याचना करनी चाहिए कि हमें शक्ति दें आपके नाम लेने की, क्योंकि शंख भगवान के हाथ में आशीर्वाद देने के लिए है, चक्र और गदा ये दंड देने के लिए है, लेकिन शंख और पद्म ये आशीर्वाद देने के लिए है। ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान आए, ध्रुव महाराज भगवान को देखकर भावा विभोर हो गए और कुछ उनके मुख से आवाज नहीं निकली। जब व्यक्ति बहुत भावा विभोर हो जाता है तो फिर उसके मुख से कुछ नहीं निकलता, बोल नहीं पाता। ध्रुव महाराज ऐसे ही अवस्था में थे, भगवान सामने हैं लेकिन उनकी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे। और उस समय भगवान ने अपने शंख का स्पर्श मात्र किया ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करना प्रारंभ किया, उनके हृदय का प्रेम उमड़ आया। तो वही प्रेम जो हमारे हृदय में है, प्रभुपाद समझाते हैं कि कृष्ण प्रेम हमें बाहर से नहीं लाना है, कृष्ण प्रेम हृदय में है। तो वो कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में है, भगवान के शंख के स्पर्श से जैसे ध्रुव महाराज के हृदय से बाहर आया, ऐसे ही हमारे हृदय से बाहर आ सकता है। और हम बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही हमें सबसे ज्यादा आनंद देगा। राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में वर्णन करते हैं भगवान के चरण कमलों के स्मरण का। वो कहते हैं हरि चरण स्मरण अमृतेना, भगवान श्री हरि के चरण के स्मरण का अमृतेना, ये जो अमृत है इससे ज्यादा सुख और कहीं नहीं मिल सकता। बहुत स्पष्ट वो वर्णन करते हैं, हरि चरण स्मरण अमृतेना तुल्यम न लभ्यते, उसके तुल्य और कोई चीज इस जगत में नहीं है। जब हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं तो जो आनंद हमें मिलता है वो आनंद इस जगत के आनंद के परे है, बहुत विशाल आनंद है वो। तो ऐसे आनंद की प्राप्ति की हमें कामना करनी चाहिए। हमें हर अवस्था को हर स्थिति को बदलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शंखनाद ये जीवन में निर्भयता और मंगलकारी चीज ला सकता है। इसीलिए हम लोग आरती के पहले शंखनाद करते हैं, शंख बजाते हैं। वैसे किसी ने एक वैज्ञानिक तौर से संशोधन किया था शंख बजाने का, तो उन्होंने बतलाया कि शंख को जब बजाना चाहिए तो अपना सर ऊपर करना चाहिए और शंख बजाना चाहिए। इससे इस तरफ एक नाड़ी होती है जो दब जाती है, अगर आप सर ऊपर नहीं करेंगे तो वो नाड़ी दबती नहीं है। तो इसीलिए हमेशा शंख बजाते समय आप देखिए, कहीं भी आप देखें जो व्यक्ति प्रमाणिक तौर से शंख बजाते हैं हमेशा उनका सर ऊपर होता है। भगवान ने भी जब शंख बजाया तो ऐसे था। तो उससे जो नाड़ी दबती है, उस नाड़ी के दबने से सकारात्मक तरंगे या पॉजिटिव भाव वेव्स, पॉजिटिव वेव्स, सकारात्मक तरंगे फैल जाती हैं। ये उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बताया, लेकिन शास्त्र बताता है शंखनाद से सब कुछ शुभ मंगलमय हो जाता है। तो दोनों एक ही बात है, चाहे वो वैज्ञानिक तरीके से उसका संशोधन करें या केवल शास्त्र पर विश्वास करें। तो इसलिए जब शंख बजाना चाहिए तो सिर थोड़ा ऊपर करके उसको बजाना चाहिए। तो इस तरह से ये शंखनाद है। और दूसरा उपयोग शंख का होता है, हम उसमें जल भरकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। ये दो प्रकार के शंख होते हैं, एक लक्ष्मी शंख कहलाता है और एक नारायण शंख कहलाता है। तो एक शंख से नाद होता है, और जो दूसरा शंख जो अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको बजा नहीं सकते, तो जिसको बजाते हैं उससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो ये शंख में जब हम जल भरकर भगवान को अर्पण करते हैं, ये सूचक है कि हम भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं ये हमारे हृदय की जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है, इसको भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर रहे हैं। या फिर जब हम भगवान को अभिषेक करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और उस जल को अपने सर पर धारण करते हैं, शिरसा धारयामहम, जब सिर पर उसको धारण करते हैं तो हम सभी प्रकार के कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान के चरण कमल इस शंख को इसलिए धारण करते हैं कि हम इसके द्वारा ये स्मरण कर सकें कि भगवान की शंखनाद हमारे हृदय में बैठे सारे असुरों को मार सकती है। भगवान का शंख में अर्पित किया हुआ जल हमारे हृदय के सारे कलमश को धो सकता है। तो अगली बार या कल सुबह या अभी भी जब आप लोग जप के लिए बैठें तो शंख का स्मरण करें, वो शंख जो भगवान के चरण कमलों पर है उसका स्मरण करें, ताकि उसके स्मरण से फिर हम लोग भगवान के चरणों का स्मरण कर सकें। तो ये शंख का महत्व है भगवान के चरण कमलों में। दूसरा चिन्ह हम लोग देखते हैं अंबर। दो ऐसे गोले आप लोग देख रहे हैं ना, दो वृत्त हैं, तो ये अंबर है। अंबर अर्थात आकाश, ये आकाश का सूचक है। और ये सूचक ये हमें समझाता है कि कृष्ण सर्वत्र हैं, जैसे आकाश सब जगह हैं, ऐसे ही कृष्ण सर्वत्र हैं। और भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि मैं सर्वत्र हूं, और जो व्यक्ति मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मही पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, सारे लोगों को मुझ में देखता है और सब में मुझे देखता है, ऐसा व्यक्ति सही योगी है, सही भक्त है। तो ये अंबर सूचक है कि भगवान सब जगह हैं लेकिन फिर भी अनासक्त हैं। भगवान के चरण कमल सब जगह हैं लेकिन अनासक्त हैं। दूसरी दृष्टि से देखें तो सब कुछ भगवान का है, वस्तुतः सकलि तव जीवे के होनाए, लेकिन फिर भी भगवान ये अनासक्त हैं। भगवान आसक्त नहीं है इन चीजों से, इस भौतिक जगत से। जैसे भक्तों का भी ये लक्षण होता है, प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर बनाए लेकिन एक भी मंदिर से आसक्त नहीं थे। जिस समय श्रील प्रभुपाद ने अपना देह त्यागा, उन्होंने वो मंदिर अपने नाम पर नहीं लिखे, उन्होंने मंदिर का धन अपने नाम पर नहीं लिखा, सारी संपत्ति अपने नाम पर नहीं की, संस्था के नाम पर। क्योंकि संस्था क्या है, प्रभुपाद कहते थे ये भगवान की, भगवान का आंदोलन है, ये कृष्ण का आंदोलन है, और सारी संपत्ति कृष्ण की है, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं रखा उन्होंने। चाहते तो कर सकते थे, हम में से कोई होता तो हम लोग सोचते, अरे इतने करोड़ों रुपया ठीक है, संस्था को आधा देते हैं आधा हम लेते हैं, 108 मंदिर में से 50 हमारे बाकी संस्था के, ताकि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ, मेरे लाल मेरे पीले जितने भी हैं आगे आने वाले, हाँ वो आराम से रह सकें। लोग इसीलिए तो संग्रह करते हैं ना, जानते हैं कि मृत्यु के समय कुछ साथ में नहीं जाएगा, आज तक गया है किसी का, जानते हैं लेकिन संग्रह क्यों करते हैं, मेरे लाल उनके लिए, उनका क्या होगा, उनका भविष्य। श्रील प्रभुपाद ने नहीं किया, अनासक्त, मंदिर खोले, भक्तों को समर्पित किया, भक्तों को दिया और चले गए, आप संभालो, दूसरा मंदिर आप संभालो, तीसरा मंदिर आप संभालो, अनासक्त। तो ये जो वृत्त है ये दिखलाता है कि भगवान सब जगह हैं, और ये हमारे हृदय का भी सूचक है कि भगवान सब जगह तो हैं लेकिन हमारे हृदय के वृत्त में भी हैं, लेकिन उनको केवल पहचानना है। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं जो मुझे सर्वत्र देखता है वो सही योगी है। इसीलिए सर्वत्र भगवान को देखने की प्रक्रिया को जानना चाहिए, भगवद गीता में बताया गया है कैसे भगवान को देख सकते हैं। जब हम जल पीते हैं, रसो हम अपसुकौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, भगवान कहते हैं कि मुझे कैसे देखना है, जल पियो स्वाद आए अच्छा लगे ये कृष्ण है, सूर्य को देखो गर्मी अच्छी लगे ये कृष्ण है, चंद्रमा को देखो इसकी शीतलता अच्छी लगे ये कृष्ण है, सर्वत्र, क्योंकि कृष्ण है, कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है, सारी कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति कृष्ण से भिन्न नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं इस जगत में, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पेड़ हो, नदी हो, समुद्र हो, सब कृष्ण है। आचार्य समझाते हैं आप जिस पर बैठे हैं वो भी कृष्ण है, आप जिस पर कीर्तन करते हैं वो कृष्ण है, ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि हम भोग कर सकें। कौन कहता है कि कृष्ण ने हमें दंड दिया है इस भौतिक जगत में भेजकर? अगर ये कहा, अगर ये दंड दिया होता तो हमारे साथ नहीं रहते परमात्मा के रूप में। अगर दंड दिया होता तो इतनी चीजें हमें प्रदान नहीं करते भोग के लिए। भगवान ने कृपा की है ताकि हम जान सकें कि सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण से परे कुछ भी नहीं है। यही हमें जानना है, यही भक्ति का सार है। वस्तुत सकलितव जीवे के होनाए अहम मम भ्रमि भ्रमि भोगे शोक पाए। हमारा धन क्या है? अहम मम एई मात्र धन, अहम मम अभिमन एई मात्र धन, यही धन है हमारा। बड़े बरसों से संचित किया है, रखा हुआ है संभाल कर, लेकिन सब अर्पण कर देना चाहिए, कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। आपके चरण कमलों में आज समर्पण कर रहा हूं, आत्मनिवेदन कर रहा हूं, अब आप मुझे शक्ति दीजिए। तो इस बात को जानना, तो ये वृत्त, ये आकाश, ये अंबर हमें सिखलाता है कि कृष्ण सब जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कृष्ण नहीं है। आप लोग सोचिए, आपको कोई ऐसा स्थान नजर आता है जहां कृष्ण नहीं है? कौन सा ऐसा स्थान हो सकता है? कभी कभी लोग कहते हैं कि ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत कैसे हो सकता है? भौतिक जगत क्या है? कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है, इसलिए कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ कृष्ण है। केवल हमारी दृष्टि इसे भौतिक बनाती है। शास्त्रों में कृष्ण की मुस्कान का वर्णन किया गया है, कृष्ण कैसे मुस्कुराते हैं और कृष्ण की मुस्कान का क्या प्रभाव होता है। दो प्रकार की मुस्कानें बताई गई हैं, एक वो जो श्याम सुंदर नदी के किनारे केशी घाट पर खड़े होकर मुस्कुराते हैं, जिससे सारे भौतिक कलमश को हरण कर लेते हैं, और दूसरा माया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, हासो जन उन्माद करी च माया। ये सारे लोगों को जो उन्माद पागल कर रखा है जिसने, वो हास्य है भगवान का, भगवान हंसते हैं। हासो जन उन्माद करी च माया, ये माया है। तो ये भगवान की दूसरी मुस्कान है। अब हमारे ऊपर है हम किसके प्रति आकर्षित हों। हासो जन उन्माद करी च माया, माया के प्रति, या फिर श्याम सुंदर केशी घाट पर त्रिभंग रूप में खड़े हुए कृष्ण के प्रति। और इसी से हमारी चेतना शुद्ध और अशुद्ध होती है। तो ये कृष्ण है, इसीलिए हमें जानना चाहिए कि सब जगह व्याप्त हैं कृष्ण, इसीलिए उन्हें विष्णु भी कहते हैं। लोगों में यह भ्रम है कि विष्णु और कृष्ण अलग हैं। विष्णु की परिभाषा क्या है? सर्वम व्यापनोति इति विष्णु, जो सर्व सब जगह व्याप्त हैं उन्हें विष्णु कहते हैं। और जिस अस्तित्व में, जिस स्थान में विष्णु व्याप्त हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। सर्व व्यापनोति इति विष्णु, तो इसीलिए कृष्ण को अगर विष्णु कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरण, ये विष्णु शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो कृष्ण के लिए है, इसको समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज कृष्ण के भक्त थे, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, वासुदेव के भक्त थे वो, नारद मुनि बतलाते हैं। तो इसीलिए कृष्ण हैं और कृष्ण सर्वत्र हैं। ये अंबर हमें सिखलाता है कि किस तरह से हमें भगवान को सब जगह देखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ ये अंबर रास लीला का भी सूचक है कि जैसे वृत्ताकार में भगवान रास नृत्य करते हैं, एक गोपी फिर कृष्ण, फिर गोपी फिर कृष्ण, अर्थात हर गोपी के साथ में दो कृष्ण। कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, तो जिस प्रकार गोपियां कृष्ण को सर्वत्र देखती हैं उस रास लीला में, इसी प्रकार एक भक्त इस वृत्त का स्मरण करके भगवान को सर्वत्र देख पाता है। जो व्यक्ति आसक्त है, जो कृष्ण ग्रह ग्राही नहीं है, भागवत में प्रहलाद महाराज के लिए वर्णन हुआ है कृष्ण ग्रह ग्राही, उनको कृष्ण नाम के ग्रह ने ग्रहण लगा लिया है। वैसे ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, हम अभी 2 दिन पहले वर्णन कर रहे थे, हम लोग कहीं बाहर गए थे तो वहां पर वर्णन कर रहे थे कि 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं प्रमुखतः। एक सूर्य ग्रहण जो 2 घंटा 45 मिनट तक रहता है, दूसरा चंद्र ग्रहण जो 1 घंटा 45 मिनट तक रहता है, और तीसरा बहुत शक्तिशाली है, पूरा जीवन रहता है, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण मतलब जानते हैं आप लोग, विवाह को पाणी ग्रहण कहते हैं। तो जब विवाह हो जाता है तो जब ये ग्रहण लगता है तो जीवन भर रहता है, वो ग्रहण से छूट नहीं सकते हैं, उसको पाणी ग्रहण कहते। देखिए शास्त्रों में भी कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कुछ और भी कह सकते थे लेकिन पाणी ग्रहण, पाणी मतलब हाथ, हाथ को लेना, हाथ ग्रहण करना, बोलते ना कन्यादान किया या हाथ स्वीकार किया, विवाह में हाथ स्वीकार किया, तो उसको पाणी ग्रहण कहते हैं। तो जब ये ग्रहण लग जाता है तो फिर आसक्ति छूटती नहीं, इसलिए तब कृष्ण ग्रह ग्राही नहीं हो पाते, तब कृष्ण नाम का ग्रहण नहीं लगता। तो इसलिए भक्तों को जब ये वृत्त का स्मरण करें हम लोग जप करते समय, तो हमें कृष्ण को सर्वत्र देखने का प्रयास करना चाहिए उनकी शक्तियों के द्वारा। जैसे हम सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, जल को देखें, पृथ्वी को देखें, आकाश को देखें, ये सब उनकी शक्ति है, तो कृष्ण का स्मरण करें। और ऐसा भक्त प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो हमेशा कृष्ण को देखते हैं। और जो साधु नहीं होते, जो स्वादु होते हैं, एक होते हैं साधु और एक होते हैं स्वादु, तो साधु हमेशा कृष्ण को देखते हैं, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और जो स्वादु होते हैं वो केवल भोग देखते हैं, इंद्रिय विषय देखते हैं, कृष्ण को नहीं देखते। तो भी आप लोगों को चुनाव करना है, आप साधु बनना चाहते हो या स्वादु बनना चाहते हो, या हमारी स्थिति को जानना चाहिए, हम साधु हैं या स्वादु हैं। अगर स्वादु हैं तो वहां से साधु की ओर जाना चाहिए, लेकिन साधु हैं तो वहां से स्वादु की ओर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से इस अंबर के द्वारा हमें कृष्ण को देखने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम जप करें तो हमें यह स्मरण करना चाहिए कि ये वृत्त हमारा हृदय है, कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हैं, कृष्ण सर्वत्र हैं, हृदय में भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमधिम शरणम प्रपद्ये, तो कृष्ण सब जगह हैं। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, कितना सुंदर बताया है। ये अंबर है, हम लोग रोज बोलते हैं लेकिन इसके अर्थ को जानते हैं? बोल दिया हो गया, नरसिंह प्रणति खत्म, चलो दंडवत करो बाहर। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, जहां देख रहा हूं वहां नरसिंह है। बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहर भी नरसिंह देव है, अंदर भी नरसिंह, हृदय में भी नरसिंह देव, ऐसे नरसिंह देव को प्रपद्ये शरण जाना चाहिए। तो जब हम जप करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब हमें इस अंबर का स्मरण करते हुए, इस वृत्त का स्मरण करते हुए कृष्ण को सर्वत्र देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण भक्ति में या कृष्ण के स्मरण को तीव्र करेंगे तब हम अनासक्त हो सकते हैं, तब हम सही दृष्टि में संतुष्ट हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस जगत में संतुष्ट नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर के पास, उसकी बहुत बड़ी जमीन थी, उस पर एक बोर्ड लगाया। उसने कहा कि ये जमीन उसको दी जाएगी जो व्यक्ति संतुष्ट है। तो एक बहुत अमीर आदमी वहां से जा रहा था, उसने देखा और उसने सोचा कि मेरे अंदर ये योग्यता है, मेरे पास धन है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ है, तो मुझे ये जमीन मिलनी चाहिए, योग्यता है मेरी, तो मुझे जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और ले ले। तो वो उस व्यक्ति के पास गया, दरवाजा खटखटाया, व्यक्ति बाहर आया, बताओ क्या बात है। मैंने कहा आपने वो बोर्ड लगाया है। मैं कहा क्या लिखा है उस पर। मैंने कहा कि जो भी संतुष्ट व्यक्ति है उसको ये जमीन दे दी जाएगी। तो उसने कहा कि मैं सबसे संतुष्ट व्यक्ति हूँ तो मुझे ये जमीन मिलनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम्हें जमीन की क्या आवश्यकता है, संतुष्ट हो ना, जमीन की क्या आवश्यकता है, मतलब संतुष्ट नहीं हो चले जाओ। तो इस तरह से संतुष्टि ये बहुत आवश्यक है भक्ति में। हम लोग सोच सकते हैं अब ये मिल गया वो मिल गया मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उस सबसे नहीं, संतुष्टि आती है जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, भक्तों के संग में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़े से अनासक्त रहते हैं। जैसे ये आकाश ये सिखलाता है, कहीं भी अटैच नहीं है, लगा हुआ नहीं है, संबंधित नहीं है, भगवान पूरे अनासक्त हैं। हमें इस जगत में कैसे रहना चाहिए, इस अंबर को देखकर क्या सोचना चाहिए। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया, कहीं दूर से आया, तो आया साधु के घर में, घुसा कुटिया में घुसा, देखा कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सी चीजें हैं, कोई सामान नहीं है। तो उसने साधु से कहा कि अरे आपका सामान कहाँ है। तो साधु ने उससे पूछा आपका सामान कहाँ है। उसने कहा अरे मैं तो अतिथि हूँ, मैं तो यहाँ केवल बाहर से आया हूँ, अतिथि, तो अतिथि के पास स्वाभाविक है सामान थोड़ी होगा, वो थोड़ी अपना पूरा बेड अपने कपड़े अपने सब कुछ थोड़ा बहुत लाता है बस, तो मैं तो अतिथि हूँ। तो साधु ने कहा मैं भी अतिथि हूँ। देखिए सिंपल चीज लेकिन कितना महत्वपूर्ण बात। साधु ने कहा मैं भी अतिथि हूँ, इस जगत में अतिथि हूँ, थोड़े समय के लिए आया हूँ, चला जाऊँगा, क्यों सामान रखना, क्यों आसक्ति होना। तो इस तरह से जब इस अनासक्ति के वृत्त को अपने हृदय में धारण करेंगे तो कृष्ण के चरण कमल को हम लोग धारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आज यहीं पर हम लोग रुकेंगे, समय बहुत हो गया है। तो अभी दो चिन्ह हुए हैं, 19 चिन्ह हैं, ये शाश्वत कथा है, चलती रहेगी, लेकिन कम से कम आप लोग प्रयास कीजिए जप के समय इन दो चिन्हों पर अपना ध्यान केंद्रित करने का, क्योंकि अभी बाकी चिन्हों का विषय नहीं पता है, तो कम से कम इन दो के बारे में, और फिर देखिए कितना अच्छा आपका जप हो जाता है। तो जब भी जप करें ध्यान हमारा इन चिन्हों पर होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।